पिछले अध्याय में आपने देखा कि देवांश ने वीनू को मार डाला और मुंबई के लिए रवाना हो गया। दिशा ने इस्तीफा दे दिया और देवांश के साथ काम करने से इनकार कर दिया। रुद्र को रूही और जय के एक्सीडेंट का वीडियो मिलता है और वो कल्लू को रूही को लाने के लिए भेजता है। इस अध्याय में रूही को रुद्र के ऑफिस बुलाया जाता है। वो डर जाती है लेकिन कल्लू के साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। दिशा देवांश के ऑफिस में इस्तीफा देने जाती है। मयंक दिशा के जाने से चिंतित है। रूही रुद्र के ऑफिस में प्रवेश करती है। रुद्र गुस्से में उसे बुलाता है। अब आगे चैप्टर 133। अब आगे रुद्र के कैबिन में। रुद्र के ये बोलने के बाद भी कि रूही उसके पास आए, फिर भी रूही रुद्र के कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख रुद्र दोबारा गुस्सा होते हुए रूही को देख अपनी कोल्ड आवाज में बोला, रूह मेरे और पास आओ। रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर रूही की पकड़ अपने कपड़ों पर कस जाती है और वे डरते हुए ही थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती है, जिसे देख रुद्र दोबारा उसे अपने और करीब आने को बोलता है और ऐसा करते करते रूही रुद्र के चेयर से थोड़ी दूरी तक आकर चली जाती है, जिसे देख रुद्र दोबारा बोला, रूह मेरे और करीब आओ। इस बार रुद्र के बोलने पर भी रूही अपने कदम आगे नहीं बढ़ाती और अपनी जगह पर यूं ही खड़ी रहते हुए अपनी धीमी मगर मासूम आवाज में बोली, मैं आपके इतने पास ही तो हूँ, आपको जो बोलना है ऐसे ही बोलिए, मैं सुन रही हूँ। इतना बोल भी अपनी पलकें झुका लेती है क्योंकि रुद्र उसे गुस्से में घूर रहा था। वहीं रुद्र रूही की बात सुनकर गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ा रूही की कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिसके रूही एक झटके में ही रुद्र के पास खींची हुई चली जाती है। वहीं रुद्र रूही को अपनी गोद में बैठा उसके चेहरे को ऊपर कर उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। वहीं रुद्र के यूं अचानक खींचने से रूही काफी डर जाती है और गिरने के डर की वजह से रुद्र के कंधे को कसकर पकड़ अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वहीं रुद्र जो रूही के डरे हुए चेहरे को गौर से देख रहा था, अचानक ही उसे रूही में से किसी आदमी से परफ्यूम की खुशबू आने लगती है, जिसे महसूस कर रुद्र की आंखें सर्द हो जाती है और वे अपनी सर्द नजरों से रूही को देखने लगता है। वहीं रूही जो अपनी आंखें बंद करके अपने सांसों को कंट्रोल कर रही थी, जब उसे अपने ऊपर किसी की सर्द नजरें महसूस होती हैं तो वे तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और अपने चेहरे के बिल्कुल करीब रुद्र के चेहरे और उसकी सर्द नजरों को देख उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है और वे जैसे ही अपने चेहरे को पीछे लेने को होती है, वैसे ही रुद्र एक झटके में रूही को अपनी गोद में उठा खड़ा हो जाता है और उसे ले अपने कैबिन में बने अपने पर्सनल रूम में अटैच बाथरूम में चला जाता है। वहीं रूही जब रुद्र को यूं खुद को गोद में उठा कहीं लेकर जाता हुआ देखती है तो रुद्र के सीने पर मारते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे घर जाना है, सुमन आंटी मेरा इंतजार कर रही होंगी, इसलिए छोड़िए मुझे। इतना बोल वे रुद्र से खुद को छुड़ाने लगती है, मगर रुद्र को तो जैसे रूही की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वे रूही को लेकर सीधा बाथरूम में आता है और रूही को सीधा बाथटब के अंदर फेंक देता है। वहीं रुद्र के इस तरह फेंकने से रूही की दर्द से चीख निकल जाती है, क्योंकि रुद्र के इस तरह फेंकने से उसे अपने कमर पर हल्की सी चोट लग गई थी, जिसकी उसकी आंखें नम हो जाती है और वे रुद्र को देख गुस्से में बोली, ये क्या किया आपने, आप मुझे इस तरह पानी में कैसे फेंक सकते हैं, मुझे चोट लग गई और ठंड भी लग रही है। इतना बोल वे बाथटब से निकलने लगती है, जिसे देख रुद्र अपनी सर्द आवाज में बोला, रूह जैसे हो चुपचाप वैसे ही रहो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम बाथटब के बाहर अपने कदम नहीं रखोगी और अगर गलती से भी तुमने बाथटब से निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, इसलिए चुपचाप बैठी रहो और जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे वे चुपचाप करने दो, वरना ऐसा ना हो रूह कि मैं अपने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दूँ। रुद्र की बात सुनकर रूही जो बाहर निकलने वाली होती है उसके कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि रुद्र ने ये बात बोली ही इस तरह से थी कि रूही उसे मानने से खुद को रोक ही नहीं पाई। वे चुपचाप बाथटब में खुद को अपने हाथों से कवर कर बैठ जाती है और अपनी पलखें झुका लेती है। वहीं रुद्र रूही को अपनी बात मानता हुआ देखकर अपने शर्ट के बटन एक एक कर खोलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में जय, निहारिका, राजीव और नेहा चारों बैठे हुए थे, क्योंकि कॉलेज के निकलने के बाद सब यहाँ पर आ गए थे। जय निहारिका को देख गुस्सा होते हुए बोला, निहारिका तुम्हें हो क्या गया है, तुम स्वीटी के साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी, आज उसकी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम थैंक यू बोलने की जगह इस तरह से बिहेव कर रही थी। जय की बात सुनकर और उसे रूही की तरफदारी करता हुआ देखकर निहारिका को काफी गुस्सा आता है और वे जय को देखते हुए बोली, जय यही तो उस लड़की की चाल है, वे ऐसा कर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है, वे तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं और तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हो, तभी तो तुम हम सबसे इतने गुस्से में बात कर रहे हो, वरना आज के पहले तुमने हमारे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं किया। निहारिका की बात सुनकर नेहा भी बोली, जय निहारिका बिल्कुल सही बोल रही है, वे लड़की रूही तुम्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती है, वरना वे अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान क्यों बचाती, तुम तो उसके दोस्त भी नहीं हो जिसके लिए वे अपनी जान खतरे में डाले। राजीव की बात सुनकर जय को देखते हुए बोला, भाई मुझे भी इन दोनों की बात सही लग रही है, तुझे उस लड़की से दूर रहना चाहिए और सिर्फ अपने काम से काम ही रखना चाहिए, ज्यादा उस लड़की के करीब जाने या उसके दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। राजीव, नेहा और निहारिका तीनों की बात सुनकर जय बोला, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हो। वैसे भी मैं भी सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता हूँ। मुझे कौन सा उसके प्यार हो गया है जो मैं उसके करीब जाऊँगा। हम बस एक कॉलेज में हैं और साथ में हमारा प्ले भी है, इसलिए मैंने उसकी फ्रेंडशिप कर ली। तुम लोग इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अब चलो, सब अपने अपने खाने पर ध्यान दो। मुझे भी कुछ काम से आज जल्दी निकलना है। इतना बोल वे अपने खाने को खाने लगता है। वहीं निहारिका जय के जवाब से पूरी तरह से सेटिस्फाई को नहीं थी, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे कम से कम इस बात की टेंशन को कम हुई थी कि जय उसके करीब नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देवांश के ऑफिस में
दिशा अपना रजिस्ट्रेशन लेटर देकर देवांश के ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी वे किसी से टकरा जाती है और उसके सर पर हल्का सा चोट लग जाता है, जिस वजह से वे अपने सर को सहलाते हुए गुस्से में अपने सामने देखने लगती है।